आज का सुसमाचार इस संत लुकस के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 29 से 35 से लिया गया है, जहाँ पर प्रभु यीशु ये प्रकट करते हैं कि हम में से कई लोग बहाने बनाते हैं, जो कारण है उसको छिपाकर दूसरे किसी बात को कारण के रूप में प्रस्तुत करना, उसी को बहाना बोलते हैं। कारण को, वास्तविक कारण को छिपाकर दूसरे किसी बात को कारण के रूप में प्रस्तुत करना। हम कुछ गलती करते हैं और उसके लिए कुछ बहाना बनाते हैं। तो आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, हम इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करें? वे बाजार में बैठे चौकरों के सदस्य हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। दूसरों की गलती निकालते हैं हम लोग, हमारी गलती के लिए दूसरों पर हम दोष लगाते हैं, कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं। सुसमाचार में बहुत से ऐसी बातें, क्योंकि ये वास्तविक बातें हमारे जीवन में ऐसा होता ही है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में ही हम इस बात को देखते हैं, जब आदम और हेवा ने पाप किया, जब ईश्वर ने उनसे पूछा तुमने ये क्या किया, तो आदम कहता है जिस स्त्री को मुझे दिया गया था वो उसी के कारण सब कुछ हुआ, पूरा गड़बड़ उसी के कारण हुआ, स्त्री के कारण हुआ। लेकिन स्त्री से जब पूछा गया, स्त्री ने कहा पूरा गड़बड़ उस सांप के कारण हुआ। दूसरों पर दोष लगाकर कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं, अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलती को महसूस नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हम में से कई लोग और हम भी कई बार इस प्रकार के कार्य करते हैं, अपनी गलती के लिए कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं, कुछ कर्तव्य उठाना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ गलती निकालते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। कभी कभी हम इस प्रकार टालते रहते हैं, हमारे जीवन के मन परिवर्तन को, बदलाव को टालते रहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5:25 में, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5:25 में हम देखते हैं कि यीशु एक रक्तस्राव से पीड़ित औरत को चंगाई प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बारे में कहा गया है कि 12 वर्ष से वो रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 वर्षों से वो पीड़ित थी। इतने लंबे समय तक पीड़ित रहने की क्या मतलब? और इससे भी बढ़कर संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में, वाक्य 5 में 38 साल से बीमार व्यक्ति को हम पाते हैं, जो कुंड के पास पड़ा रहता है 38 साल से। और उसे भी प्रभु प्रश्न करते हैं, क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, चंगा होना चाहते हो तुम? हम में से कई लोग ऐसे हैं जो चंगाई प्राप्त करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, और इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। दूसरों पर दोष लगाएंगे, उसके कारण ऐसा हो रहा, इसके कारण ऐसा हो रहा है, क्या परिस्थिति पर हम दोष लगाते हैं, हम बदलना नहीं चाहते। और उस व्यक्ति से, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 5:5, उस व्यक्ति से, 38 साल से बीमार व्यक्ति से प्रभु ने पूछा, क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? वह हाँ ना नहीं कहता, वो कहता है मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतार सकता है। उधर भी वो 36 साल के बाद भी वो दोष लगा रहे हैं, अभी भी वो नहीं बोल रहा है कि मुझे चंगाई प्राप्त करना है, अभी भी बोल रहा है कि उसके कारण, इसके कारण ऐसा हो रहा है, मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतार सकता है, इसलिए मैं पड़ा हूँ। हम कभी कभी इस हमारे बदलाव को, हमारे मन परिवर्तन को टालते रहते हैं। कभी कभी हम अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते, हम इधर उधर कान देखते हैं। जब ईश्वर हमसे بہت ہی سیدھے طریقے سے بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، تب بھی ہم ادھر ادھر بھڑکنا چاہتے ہیں، ہم پھر بھی لائن میں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ ایشور بہت ہی سیدھی طریقے سے ہم سے کبھی کبھی بات کرتے ہیں، ہم کو ایسی جگہ لاتے ہیں، ہم کو ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور ایشور ہم سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تب بھی ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پر دوش لگانے لگتے ہیں۔ رومیوں کے نام سنت پولس کے پہلے پتر میں ادھیائے 18 سے واقعہ ادھیائے ایک واقعہ 18 سے 22 میں ہم اس سمبندھ میں کچھ پڑھتے ہیں۔ ایشور کا کرودھ سورگ سے ان لوگوں کے سب پرکار کے ادھرم اور انیائے پر پرکٹ ہوتا ہے جو انیائے دوارا ستیہ کو دبائے رکھتے ہیں۔ ایشور کا گیان ان لوگوں کو سپشٹ روپ سے مل گیا ہے، کیونکہ ایشور کی سرشٹی کے ایشور نے اسے ان پر پرکٹ کر دیا ہے۔ پربھو کے پروچن کہتا ہے ان لوگوں کو ایشور کا گیان ملا ہے، ایشور نے اپنے آپ کو ان لوگوں پر پرکٹ کیا ہے۔ سنسار کی سرشٹی کے سمے سے ہی ایشور کے آدرش سوروپ کو اس کی شواس شکتی منتا اور اس کے ایشورت کو بدھی کی آنکھوں دوارا اس کے کاریوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے آچرن کی صفائی دینے میں اسمرتھ ہے۔ ایشور کا گان انہیں دی گئی ہے، ایشور کی پرگیا انہیں دی گئی ہے، اور اس لیے اپنے پاپوں کے لیے، اپنے کرموں کے لیے کوئی کارن نکالنا ان کے لیے اسمبھو ہے، کوئی بھی بہانہ بنانا بھی ان کے لیے اسمبھو ہے، لیکن پھر بھی وہ بہانہ بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایشور کو جانتے ہوئے بھی اسے سموچت آدر اور دھنیواد نہیں دیا، ان کا سمست چندن ویرتھ چلا گیا، ان کا ویویکہین من اندھکارمے ہو گیا۔ وہ اپنے کو بدھیمان سمجھتے ہیں کنتو وہ مورکھ بن گئے۔ ایشور کا گیان انہیں دیا گیا ہے، ایشور کی پرگیا انہیں دی گئی ہے، پھر بھی وہ لوگ بہانہ بنا کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیسے بہانہ بنا سکتے ہیں، کوئی کارن نکالنے میں اسمرتھ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کارن نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کارن نکالنے میں وہ اسمرتھ رہتے ہیں۔ یوحنا کے سوسماچار کے ادھیائے 15 واقعہ 22 میں پربھو کا وچن کہتا ہے، یدی میں نہیں آتا اور شکشا نہیں دیتا تو انہیں پاپ نہیں لگتا، پرنتو اب تو ان کے پاس اپنے پاپ کا کوئی بہانہ نہیں۔ پربھو کا وچن کہتا ہے اگر میں یہ سب پرکٹ نہیں کرتا، پربھو یسو کہتے ہیں اگر میں نہیں آتا، یہ شکشا تمہیں دیا نہیں جاتا تو تمہارا کچھ کارن، تم کچھ کارن نکال سکتے تھے، لیکن ابھی میں تو آ گیا، میں نے تمہیں شکشا دی اور تم کیسے بہانہ نکالو گے، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا ہے۔ لوکاس کا سوسماچار ادھیائے 14:15-25، وہاں پر لوکاس کا سوسماچار ادھیائے 14:15-25 وہاں پر ایشور اپنے بھوج کے لیے لوگوں کو نمنترن دیتے ہیں، سب کو نمنترن دے رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ بہانہ بناتے ہیں، لیکن وہ سبھی بہانہ کرنے لگے۔ لوکاس کا سوسماچار ادھیائے 14:18، لیکن وہ سبھی بہانہ کرنے لگے، پہلے نے کہا میں نے کھیت مول لیا ہے اور مجھے اسے دیکھنے جانا ہے، تم سے میرا نویدن ہے میری اور سے کھما مانگ لینا، دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑے بیل خریدے ہیں اور انہیں پرکھنے جانا ہے، اور ایک نے کہا میں نے وواہ کیا ہے और मैं नहीं आ सकता, इस प्रकार अलग अलग बहाना बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बहाने बनाने वाले नहीं बचते। कई लोग अपने मन परिवर्तन को टालते हुए बहाना बनाते रहते हैं, बहाना बनाते रहते हैं, अपने क्षमताओं को दबाते हुए, क्षमताओं को गड्ढा खोदकर उसमें दबाते हुए, गाड़ते हुए कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं। हम जानते हैं अशर्फियों के दृष्टांत में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में अशर्फियों का दृष्टांत है। जिसको एक मिला था उसने क्या किया, गड्ढे में गड्ढा खोदकर उसके अंदर दबा दिया उसको। और जब उनके पास स्वामी आते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए, तो वो बहाना बनाने लगते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25, दो लोग जो आते हैं, पहले जिनको ज़्यादा मिला था वे बहाना नहीं बनाते हैं, वे कहते हैं तुमने इतना दिया था, हमने इतना और कमा लिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जब आता है, अंत में वो आया, 25:24 अध्याय 25:24, अंत में वो आया जिसे 1000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने कहा स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं, आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूटते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया। अभी ये बहाना भी बना रहे हैं और स्वामी पर कड़ंग लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। कभी कभी हम ये भी करते हैं, मुझे ईश्वर ने वरदान नहीं दिया, ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं छोड़ा है, लेकिन हमको खुद मालूम है कि हम बहाना बना रहे हैं। हमारे क्रिश्चियन जीवन में अगर हम बहाना बनाते हैं हमें कोई छूट नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा। हमें वास्तविकता को परखना है, हमारे मन वास्तविकता को परखना है। मैं ईश्वर के लिए दुख संकट झेलना नहीं चाहता, मैं अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ न कुछ बहाना बनाता रहता हूँ। इसके विषय में आज के पहले पाठ में इन सब का सबके लिए क्या हम कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे हो सकता है, ये आज के पहले पाठ में है। हम जानते हैं कि कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 पूरा प्यार के बारे में है, प्रेम के बारे में है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13। लेकिन अगर हम अध्याय 13 को 12 के आखिरी शब्द से, आखिरी वाक्य से शुरू करेंगे तो हम पूरी तरह अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे। प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में पूरा अध्याय 13 है, लेकिन 12 के अंतिम वाक्य को अगर हम समझेंगे फिर 13 को पढ़ेंगे तो पूरा हमारे समझ में आ जाएगा। तो 12 अध्याय 12 के आखिरी संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पत्र, पहला पत्र अध्याय 12 के आखिरी में क्या लिखा है, आखिरी में वाक्य 31, आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें, मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें, मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता। वास्तव में ये वाक्य 13 के पहला वाक्य होना चाहिए था। और इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, मैं भले ही मनुष्यों और स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता खडियाल और झनझनाती झांझ मात्र हूँ। और आगे प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में रघुवचन हमसे बहुत कुछ कहने लगता है। हमारे अंदर अगर ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है, दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, सब बिगड़ जाएगा, फिर हम बहाना करने लगेंगे। तो आइए हम इस हमसा वरदान में, जो प्यार का वरदान है, इसमें ईश्वर से विनती करें, ईश्वर हमें प्यार के वरदानों से भर दे। प्यार पवित्र आत्मा की शक्ति है। ईश्वर से हम निवेदन करें, हे ईश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की शक्ति प्यार से भर दे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, पवित्र आत्मा का बल प्रदान करें, ताकि हम बहाना नहीं बनाएं लेकिन वास्तविकता को परखें और अपने जीवन को बदल दें। दूसरों पर दोष लगाने से अंतिम दिन जब हमें प्रभु के सामने खड़े रहना पड़ेगा, उस समय हम कोई बहाना नहीं ढूंढ पाएंगे, हमारी वास्तविकता को सबके सामने व्यक्त किया जाएगा, उस समय हम परेशान होंगे। इससे अच्छा यही है कि हम आज ही वास्तविकता को पहचानें और ईश्वर को परखें। हमारे जीवन में हमें न्योता देने वाले ईश्वर को समुचित जवाब दें।